नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की प्राथमिकता पश्चिम एशिया के संघर्षरत क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा। पालक्कड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया की स्थिति के मद्देनजर नागरिकों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने का आग्रह किया। अफगानिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 26 घायल। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने संघर्षरत क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने आज केरलम के पालक्काड़ में एक चुनावी जनसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा NDA सरकार के लिए सर्वोपरि है।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख राजनीतिक दलों वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की आलोचना करते हुए उन पर राज्य को भ्रष्टाचार के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल NDA गठबंधन ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। बाद में प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले में रोड शो किया। केरलम के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के आरोपों को झूठा बताया है। तिरूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे दावे कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी ने असम में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोक दिया है। सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अगले 5 वर्ष में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए काम करेगी।
एक एक घुसपैठिए को हम डिटेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और रिपोर्ट कर जहां से आए हैं वहां वापस भेजने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प।
श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में असम काफी हद तक उग्रवाद से मुक्त हो गया है, जिससे क्षेत्र में शांति और नए अवसर आए हैं। असम में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट धेमाजी विधानसभा क्षेत्र में राज्य की बाकी 125 विधानसभा सीटों के साथ 9 अप्रैल को मतदान होगा। ये क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है, जहां कृषि मुख्य आजीविका है। इसीलिए बार बार आने वाली बाढ़ यहां मतदाताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
असम में 2023 के परिसीमन के बाद ऊपरी असम के धेमाजी विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी परिदृश्य काफी बदला हुआ है। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन मतदाताओं की संख्या में कमी है। 2021 में परिसीमन से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,47,000 से अधिक मतदाता थे और 77.47% मतदान दर्ज किया गया था। इस बार कुल 1,78,880 मतदाता है, जो काफी गिरावट है। इसके बावजूद इस निर्वाचन क्षेत्र का राजनीतिक महत्व बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि अब महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस बार मुकाबला 6 कोणीय है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मौजूदा मंत्री डॉक्टर रानूज पेगू फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के शैलेन सोनोवाल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नरेंद्र कुमार पाव और 3 अन्य उम्मीदवारों से होगा। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दल पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा अन्य राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हमला कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने बहरामपुर से पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी, भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद, मालतीपुर से पूर्व सांसद मौसम नूर, नंदीग्राम से एसके जरियातुल हुसैन, पानीहाटी से शुभाशीष भट्टाचार्य और विधाननगर से रणजीत मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट विधानसभा चुनाव में दार्जिलिंग पहाड़ी और तराई की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फ्रंट के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने आज पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ये मुश्किल समय है।
जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि कोविड महामारी की तरह ही देश इस मुश्किल हालात से भी बाहर निकल जाएगा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से इस चुनौती से एकजुट होकर निपटने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने का आग्रह किया।
निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए, सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें।
सरकार ने कहा है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील दोहराई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं को सहयोग देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटा दिया गया है। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क भी लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति संकट से पहले के स्तर लगभग 70% तक पहुंच गई है। इस बीच सऊदी अरब में ईरान के जवाबी हमले के बाद अमरीकी सैन्य विमान को हुए नुकसान की खबरों के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति और बिगड़ गई है। हमले में निगरानी और युद्ध प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाला अमरीकी E-3 सेंट्री AWACS विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। ईरान के प्रेस टीवी द्वारा जारी तस्वीरों में विमान को हुए व्यापक नुकसान को दिखाया गया है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। उधर इसराइल ने ईरान के कई हिस्सों पर दोबारा हवाई हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली सैनिक शहीद हो गया और 3 अन्य घायल हुए। इस बीच अमरीका ने USS ट्रिपोली पर अतिरिक्त मरीन सैनिक तैनात किए हैं। अफगानिस्तान में बाढ़, भूस्खलन और आंधी तूफान के कारण पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से कुल 13 प्रांत इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आपदा ने बुनियादी ढांचे और कृषि को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि न्याय सभी के लिए सुलभ और उस पर होने वाला व्यय वहन करने योग्य होना चाहिए। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के अंतर्गत आयोजित टेली लॉ कार्यक्रम गतिविधियों पर राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय की समयबद्ध पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी के मारे जाने की खबर है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड की टीम ने पोलमपल्ली क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था। और 10वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने आज 2 कांस्य पदक जीते। 4 अन्य खिलाड़ी अलग अलग वर्ग में फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में भारत की अनु ने 1 कांस्य पदक जीता, वहीं पुरुष सेमीफाइनल में गौतम मनकास भी 1 कांस्य पदक जीते। मौसम विभाग ने कल जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और बादल गरजने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की प्राथमिकता पश्चिम एशिया के संघर्षरत क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा। पालक्कड़ में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया की स्थिति के मद्देनजर नागरिकों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने का आग्रह किया। अफगानिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 26 घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।